वो जो आलम, इसीलिए आलमीन कह दिया गया। एक एक चीज का नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज का नाम लेना लगे तो पूरा कुरान इसी से भर जाए। तो आलमीन कह दिया गया, जहान है जहान, तमाम जहानों का। तो चिड़िया एक, वो चिड़िया का एक जहान है, चींटियों का एक जहान है, कौवों का एक जहान है, चीलों का एक जहान है। अब मुझे तो सारे परिंदों के भी नाम नहीं आते, अब सारे परिंदों के नाम आप गिनते जाएं। हम कई कई दफा देखते हैं अपने यार्ड्स में बाहर इतने खूबसूरत परिंदे, कहते हैं अच्छा ये भी एक परिंदा था, ये तो हमने कभी नहीं देखा, इस रंग का भी एक परिंदा था। तो हम तो परिंदों के जहान को जानते ही नहीं। हर हर जो स्पीशी है उसका एक जहान है ना, तोतों का एक जहान, उनमें कई तरह के तोते हैं। अब इस तरह कई तरह के कीड़े हैं, इस तरह के कई तरह के हैवानात हैं, शेरों का एक जहान, एक बंदरों का जहान, एक और जितने भी आप लगा लें, सांपों का एक जहान, फिर इसी तरह इंसानों का एक जहान जिसमें काले गोरे स्याह सफेद सब इंसान आ गए, जिन्नात का एक जहान, फरिश्तों का एक जहान, और फिर आलमीन जो है ना, आलम की जमा है। और ये जविल उकूल के लिए आता है। जविल उकूल मतलब क्या, वो जो अकल वाली मखलूक है जिनमें तीन ही समझी जाती हैं, इंसान जिन और फरिश्ते। लेकिन इसमें सब स्पीशीज क्यों आ गए, इसलिए कि इनको कहकर सबको इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि टॉप पे तो यही है ना, जिनकी पास अकल है वही टॉप पे है मखलूकात में, इंसान सबसे टॉप पे है, और फिर और भी जो अकल वाले हैं, और फिर उनसे नीचे सारे जो जितने भी जानदार हैं। तो बेसिकली जितने भी मखलूकात हैं वो सब, उनका एक एक जहान है, पत्थरों का एक जहान है, दरख्तों का एक जहान है, सितारों का एक जहान है, सैयारों का एक जहान है। अब आप सोचें, इस सबसे पहले जो मैंने आपको क्या बताई, वो रब है इन सबका, इन सबका मास्टर है, इन सबका आका है, इन सबका मालिक है, सब अल्लाह के गुलाम है। अंदाजा करें, ये रब्बुल आलमीन ना कहने को दो लफ्ज हैं, लेकिन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है ये, कहां कहां तक इसकी डेप्थ है वो हम समझ नहीं सकते, हमारी अकलों से बियॉन्ड है ये बात। ठीक है, अब मैं जो एक एक आपको तारीफ बताऊंगी ना रब की, उसको आपने आलमीन के साथ जोड़ना है, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह सिर्फ रब्बुल इंसान नहीं कहा गया है। प्लीज इसको छोटा ना करें, कन्फाइन ना करें, वो रब है इंसानों का, वो मेरा आका है, वो ये बातें करके चलो आगे चलो, नहीं, हर एक उसका गुलाम है। अब वो चाहे कोई फरिश्ता है, चाहे कोई औलिया अल्लाह है, चाहे कोई नबी है, सब अल्लाह ही के गुलाम है। समझ आ गई बात? अच्छा फिर दूसरा लिखिए, मालिक आका लिख लिया ना, मालिक आका एक ही बात हो गई ना, मास्टर। और अपने आप को फिर गुलाम समझें, पहली तो ये बात है, कुरान खुलते ही आपको पहले मानना पड़ेगा कि मेरा को, अब आलमीन में मैं और आप भी तो है ना, या नहीं है? है ना, है ना, तो हमारा एक रब है, तो हमारा एक आका है, हम उसके गुलाम है। तो पहले कन्फेस करें, एतराफ करें, मैं किसी की गुलाम हूं, अपनी अकल की गुलाम ना बने, अकल मेरी मास्टर नहीं है, मैं अपनी अकल या दिल की गुलाम नहीं हूं। दिल कर रहा है ये करने का, मेरा दिल नहीं करता उठने का सुबह को, दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का, तो आप तो गुलाम दिल की बनी नहीं, आपने तो कहा था कि रब्बुल आलमीन अल्लाह है। कुरान खोलते ही पहला सबक ही हम तो भूल गए, आगे तो अभी चलना है भाई, आगे तो अभी आएगा, क्योंकि जो आका होता है वो कोई हुक्म देता है, गुलाम उसको पूरा करता है, राइट? अब जो गुलाम कह रहा है मुझे तो समझ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मेरा आका क्या क्या रहा है, तो उसने क्या गुलामी करनी है? अब हम ये कुरान खोल रहे हैं तो हम यही तो सीखने लगे हैं कि मेरे आका का हुक्म क्या है, मैं उसकी गुलाम हूं, मुझे करना है वो सब कुछ जो जो आका मुझे हुक्म देता है, और मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो अब हम जब देखते हैं इस रिलेशनशिप को, तो हमें इस बात की समझ आ जाती है कि मैं आजाद नहीं हूं, मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। कितने लोगों को ऐसे कहते थे सुना है, मैं को किसी गुलाम, हाँ है आप गुलाम, अल्लाह के गुलाम है, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी तो नहीं चल सकती, गुलाम तो नहीं कह सकता मेरी मर्जी। अब करना वही होगा, आपने मान जो लिया रब्बुल आलमीन, कहते जाते मुंह से, मेरे ख्याल 100 दफा आपने ये कलिमात कहे होंगे, या नमाज में कितनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन आपने कहा है, कभी ये भी सोचा कि मैं गुलाम हूं? मैं पहनूंगी किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से पहनूंगी, कौन मुझे डिक्टेट कराएगा? मैं खाऊंगी अपनी मर्जी से, कोई मुझे नहीं कह सकता कि तुम ये खा सकती ये नहीं। मैं जागूंगी अपनी मर्जी से, अजान होती है तो होती रहे, आई डोंट केयर, मेरी मर्जी। मैं देखूंगी तो जो मेरा दिल चाहता है मैं वो देखूंगी, हाँ मुझे नहीं कोई कह सकता। मैं सुनूंगी तो हाँ मेरा दिल करता है कि मैं ये चीजें सुनूं, अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं सुनूंगी ये सब सुनूंगी क्योंकि मेरा दिल करता है, और मुझे कोई नहीं कुछ कह सकता। ये क्या एक गुलाम की बातें हो सकती हैं? फिर पहले तो आप ये फैसला कर लें गुलाम है कि नहीं है, पहले तो ये यहां पे ही फैसला करें, फिर ही तो आगे कुरान में चलेंगे ना। अगर तो आप मानते हैं कि मैं गुलाम हूं तभी आप इस आयत पे ईमान लाए, और अगर आपने पहले दिन ही कह दिया नहीं जी मैं नहीं गुलाम हूं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी पीऊं, जो मर्जी देखूं, जो मर्जी सुनूं, जैसा मर्जी पहनूं, जैसे मर्जी रहूं, जैसे मर्जी अपनी खुशियां करूं, जैसे मर्जी अपने गम करूं, मेरी मर्जी चलेगी, तो आपने तो पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो गुलाम हूं ही नहीं। अब आप पढ़ते जा रहे हैं कुरान, रमजान में खत्म करते जा रहे हैं, और आपको यही नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना क्या है। बहुत सोचने की बात है ये हम सबके लिए। तो पहले कन्फेस करें, इतराफ करें, मैं गुलाम हूं, फिर हम आगे चलेंगे। ये अगर ये नहीं मानना ना तो जाओ फिर आजाद हो, फिर आजाद, ये काफिर भी आजाद हैं, वो जो और घूम रहे हैं किसको भी पूज रहे हैं वो भी आजाद हैं, सब है, सब ने आजादी ली, सिर्फ मुसलमान कहता है कि मैं गुलाम हूं, मेरा रब अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है अल्लाह, तमाम जहानों का रब है, तो मेरा भी तो वही रब है। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने कह दिया कि वो आका है, पहला आपने रब में ये आ गया, नंबर टू लिखे रब के मानों में मुरब्बी, मुरब्बी मीन्स केयर टेकर, वो मेरा ख्याल करने वाला, ख्याल करने वाला जिसको हम कहते हैं पालने वाला, हम कहते हैं ना, हम रब का तर्जुमा क्या लिखते हैं, वो पालने वाला है तमाम जहानों का, तो वो मुरब्बी है, पालता है, केयर करता है, उसने पैदा करके छोड़ नहीं दिया बल्कि वो पालता है। और पालने की सिफत हम किसके साथ लगाते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हमसाए पालते हैं, मेरी दोस्त पालती है, फला डॉक्टर है वो पालता है, हम किसके लिए कहते हैं पालता है, माँ पालती है, राइट, जब माँ पालती है कहते हैं तो पालती में क्या आता है, परवरिश करती है, पालती है, टेक केयर करती है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ आप डिफाइन कर सकते हैं कि फिर माँ पालने में क्या क्या करती है, सभी कुछ तो करती है, खिलाती भी है, पिलाती भी है, हिफाजत भी करती है, देखती भी है मेरा बच्चा सही ग्रो कर रहा है कि नहीं, देखती है मेरे बच्चे को कांटा भी ना चुभ जाए, देखती है मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए, देखती है मेरे बच्चे को सर्दी गर्मी ना लग जाए, देखती है कि मेरा बच्चा हर तरह से एक हिफाजत में रहे, प्रोटेक्शन में रहे ना? तो मुरब्बी में वो आ जाता है, पालना, अल्लाह ताला पालता है तुम्हें, परवरिश करता है तुम्हारी, और इसमें एक मोहब्बत का आंसर भी आ जाता है, मोहब्बत भी देती है ना, जो पालने वाली जात होती है वो मोहब्बत करती है। अच्छा, फिर आगे सैयद इंचार्ज भी है वो, एक अगला लिखे मुनाइम, नेमते देने वाला, वो नेमते भी देता है, जो रब होता है ना वो नेमते भी देता है। अच्छा, वैसे आप दुनिया के आका देखें वो अपने गुलामों के ऊपर नेमते नहीं करते ना, उनको पालते हैं, तो सिर्फ पहला माना नहीं लिख लेना, ये सारे माने हैं इसके अंदर, तो वो नेमते देने वाला, उसने कितनी नेमते दी हैं, इसलिए कि वो रब है। अल कय्यम, अल-कय्यिम का मतलब है जो तुम्हें कायम रखने वाला है, यानी तुम्हारी एग्जिस्टेंस उसके बगैर कायम ही नहीं रह सकती। वो देखे ना, अब वो आपके दिल को चला रहा है तो आपका दिल चल रहा है, सांस को चला रहा है तो आपकी सांस चल रही है, वो आपको मेंटेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो आप जिंदा हैं, अदरवाइज नहीं जिंदा रह सकते। यानी मेरे कयाम के लिए वो रब है, मेरा जो वजूद कायम है ना इस जमीन के ऊपर, वो इसलिए कि एक रब है जिसने इसको कायम किया हुआ है, वरना अदरवाइज पैरिश हो जाते, खत्म हो जाते बिल्कुल। ठीक है, वो ना कायम करे तो दिल चलेगा? दिल को मैं चला रही हूं क्या या आप चला रहे हैं? हम तो अपने दिल के भी मालिक खुद नहीं, अपने जिस्म के मालिक खुद नहीं, कोई है जो चलाने वाला है, तो है जो हमारा सस्टेनर है। ठीक है, तो इतने माने आ गए एक लफ्ज रब में। अब इस लफ्ज को लेके आलमीन में सबके साथ लगाएं, जितने जहान है उनके साथ लगाएं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो हशरात हैं, चाहे वो हैवानात हैं, चाहे वो मछलियां हैं, चाहे वो जिन्नात हैं, चाहे वो कुछ जितने भी जहान हैं, उन सब का रब अल्लाह है। क्या फिर अकल हैरान नहीं होती? तो अल्लाह की ये सारी हमद क्यों है? क्यों है अल्लाह के लिए सारी हमद? अब कोई पूछे क्यों अल्लाह के लिए क्यों है सारी हमद? इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है। ठीक है, और कोई और रब्बुल आलमीन नहीं है। दिखाओ कोई और जो ये सब काम करता हो, जिनको भी कोई पूजता है, क्या उनमें से कोई भी ऐसा है जो जहानों को तो छोड़े, एक जहान या किसी एक फर्द को भी उसका रब बन सकता हो? नहीं, जो उसका खालिक भी हो, मालिक भी, आका भी हो, उसका उसकी पालता भी हो, उसका ओनर भी हो, उसको कायम भी रखता हो, उसको नेमतें भी बख्शता हो, ये तो कोई भी नहीं है। एक फर्द के लिए भी नहीं, जहानों की कहां बात चली गई। ठीक है, तो बहुत बड़ा कलमा है जब हम रब्बुल आलमीन कहते हैं। इसीलिए जब हम दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन, अल्लाह तो सारे जहानों का मालिक भी है, पालने वाला भी है, उनको कायम रखने वाला भी है, उनके ऊपर नेमतें देने वाला भी है, तो मेरे भी इस काम को कर दे। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है? अर रहमान और अर रहीम, ये अल्लाह ताला की दो और सिफात आ गई यहाँ पे। और फौरन ये क्यों आई? इसलिए कि अगर इंसान सिर्फ आका का तसव्वुर करता है ना, कि एक आका है और मैं गुलाम हूं, तो दिमाग में क्या ख्याल आता है? दुनिया में आका कैसे होते हैं? बड़े जालिम होते हैं, बड़े। अब जो ही गुलाम का हमारे दिमाग में तस्वुर आता है, तो एक कोई हबशी आदमी आता है और ऐसे लगता है कोई कोड़ा उसको मार रहा है, और वो ऐसे ऐसे आता है ना जहन के अंदर। तो अल्लाह ताला ने बताया कि नहीं, अल्लाह ऐसा आका नहीं है, वो तो अर्रहमान है और अर्रहीम है। ये दोनों लफ्ज किस मादे से निकले, यानी कोई उनका रूट होता है नीचे हर वर्ड का, उसमें से वो वर्ड निकलता है। और इसका रूट है रॉ, हा और मीम, जिसको हम कहते हैं रहम। रहम का वैसे रहम जिसको हम उर्दू में भी कहते हैं रहम, रहम वैसे क्या होता है? और किस चीज को हम रहम कहते हैं? आपने कभी लफ्ज सुना है रहमे मादर? रहमे मादर सुना, माँ का रहम, वो क्या होता है? यूट्रस, जिसमें बच्चा होता है, वो बच्चेदानी कह लो या यूट्रस कह लें। तो वो रहम कैसा होता है बच्चे के लिए? उसमें बच्चा परवरिश पाता है, उसमें बच्चे की सारी जरूरियात भी पूरी होती हैं, उसमें बच्चे की हिफाजत भी होती है, चारों तरफ से उसने बच्चे को घेरा होता है, और बच्चा उसके अंदर बड़े यानी इत्मीनान से होता है, उसको कोई गजन नहीं पहुंचती वहां। ऐसा ही है ना, माँ अपने ऊपर ले ले कि वो बच्चे का, जो माँ को कोई भी चीज ऐसी तकलीफ कोई आनी हो, या कोई ऐसी सामने से नजर आ रही कोई कोई खतरा आ रहा है, तो फौरन अपने पेट को पकड़ती है पहले, जब उसमें बच्चा होता है। तो यानी रहमे मादर से आपको क्या पता चला कि ऐसी कोई चीज जिसने ढांपा हुआ है, चारों तरफ से कवर किया हुआ है, मोहब्बत से, केयर से, नेमतों से, सारी जरूरियात वहां पूरी होती हैं। तो जब अल्लाह ताला के लिए रहमान का लफ्ज आता है, तो रहम का अब आपको माना पता चल गया ना, तो वो रहमान जब भी अलिफ नून एंड में आएगा ना, उसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम का माना आ जाएगा, बहुत ज्यादा। इसीलिए जब हम बहुत लिखते हैं ना माना, तो हम कहते हैं बहुत मेहरबान, ये लिखते हैं बहुत मेहरबान। तो जब हम रहमान कहते हैं तो एक्सट्रीम रहम, मतलब रहमत क्या है, रिक्कते कल्बी, इसमें एक तो दिल की नरमी, और इसमें क्या आता है, मोहब्बत, बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा केयर। रिक्कते कल्बी, मोहब्बत, केयर, मर्सी जिसको कहेंगे, वो भी इसके अंदर मर्सी है कि अल्लाह सबसे पहले हमें जब रहमान बता दिया, अल्लाह ने अपना तारुफ क्या कराया, अपनी सिफत कौन सी लाया, एक तो पहले रब्बुल आलमीन की, और उसके बाद रब्बुल आलमीन में भी बेशक केयर है, ठीक है, उसमें भी केयर है, और इंसान केयर करता है उसी चीज की जिसकी उसको परवाह होती है, जिससे मोहब्बत होती है, जिसके कोई एहसास होता है। और फिर रहमान लाके तो और भी बड़ी बात कह दी, इंतहा से ज्यादा रहम करने वाला रहमान में ये आता है, यानी इन क्या चीज, इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, इंतहा से ज्यादा केयर, इंतहा से ज्यादा किसी की ये रिक्कतुल कल्बी, मर्सी। सोचें कि वो रब जिसका नाम ही, जिसकी सिफत ही रहमान है, उसकी मोहब्बत की वुसत का आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या, क्या अंदाजा कर सकते हैं वो कितना रहमान है। और बाज दफा हमें कहते हैं लो इस चीज में क्या रहम अल्लाह का, फिर मौजी फलां तो इतना बीमार है, मतलब उसके ऊपर अल्लाह की क्या रहमत होगी, हमें क्या पता रहमत कहाँ कहाँ छुपी होती है। आपको एक हदीस बस बताती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कुछ बंदों के लिए जन्नत में ऊंचे दर्जे रखे होते हैं, मगर उनका अमल उन उससे कासिर होता है, यानी उन तक अमल पहुंच नहीं पाता, उनका अमल इतना नहीं है इस काबिल के वो वहां तक पहुंचे, तो अल्लाह उनको दुनिया में कोई घाटा दे देता है, कोई तकलीफ दे देता है, कोई बीमारी दे देता है, कोई सदमा दे देता है, तो ताकि वो उस दर्जे को पा लें। तो हम कहते हैं लो इसमें क्या रहम है, हमें क्या समझ कि वो जात जो कसीर और रहमा है, तो वो इसने क्या इसके अंदर रहम रखा होगा, हम नहीं वो जानते। अब रहमान में क्या आया, इंटेंसिटी आ गई, बहुत एक्सट्रीम आया कि बहुत बहुत ज्यादा मुबालगा, और दूसरा माना इमीडिएट का कि इसी वक्त उसकी रहमत हो रही है, इस वक्त, यानी जो हम इस वक्त बैठे हुए तो ये उसकी रहमत है जो हम इस वक्त हैं अपने गुनाहों के बावजूद, यानी इस वक्त भी उसकी रहमत का की मैनिफेस्टेशन, उसका जहूर हमारे ऊपर है, ठीक है, अमली शक्ल हम देख रहे हैं, उसकी रहमत है ही तो मैं बैठी हूं। तो ये रहमान के अंदर माना आ गया। फिर अर रहीम, रहीम और रहमान अगर अलग अलग आए ना, अकेले अकेले, तो दोनों के अंदर यानी दोनों माने आ जाते हैं, यानी रहमान में फिर रहीम का भी माना होगा, अगर रहीम अकेला आ जाए तो उसमें भी फिर रहमान का भी माना आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों इकट्ठे आए तो जाहिर है कोई ना कोई तो फर्क होगा ना। और मैंने आपको पिछली दफा क्या बताया था कि रहमान अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखरत में भी, और रहमत उसकी दुनिया में और आखरत में है, लेकिन रहीम अल्लाह ताला एक्स्ट्रावेगेंट आखरत में है, खास रहमत है अल्लाह ताला की जो मोमिनों के साथ होगी, ठीक है, या ये कह दें रहमान अल्लाह दुनिया में और रहीम अल्लाह आखरत में, ठीक है। उसकी रहमत की वुस्सत अगर आप जानना चाहें तो सिर्फ इस बात से ही जान लें कि फिरौन डूब रहा था और कहने लगा मैं अब मूसा के रब पे ईमान लाता हूं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि वो फिरौन जिससे बड़ा जालिम, जाबिर, मुतकब्बिर, अल्लाह का मुकाबला करने वाला भी और इंसानों के ऊपर भी इंतहा से ज्यादा जुल्म करने वाला तारीख में कोई ना गुजरा ना कभी शायद आ सकता है, जो फिरौन था। और पैगंबर उसके पास पैगाम लेकर आया तभी भी उसने सरकशी ना छोड़ी। लेकिन डूबते वक्त जब कहने लगा मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि मैंने खाक उसके मुंह में डालनी शुरू की कि कहीं ये ना हो कि अल्लाह की रहमत को जोश आ जाए और अल्लाह इसको माफ कर दे। यानी उन फरिश्तों को भी पता है कि अल्लाह की रहमत की वुसअत कितनी है, अल्लाह कैसे रहम फरमाता है मखलूक पे। और इसी तरह एक वाक्य आता है जैद बिन हारिसा का कि काफरों एक काफिर ने उनको पकड़ लिया था कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं, इनको तकलीफ पहुंचाऊं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। तो उसने इनको बांध दिया और कत्ल करने के दर पे था। तो आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या फरमाया, या अरहमुर राहिमीन, तो एक आवाज आई ला तकतुल, इसको ना कत्ल करो। उसने इधर उधर देखा कोई नहीं था, फिर दोबारा तलवार उठाई, वो फिर बोले यार हम राहिमीन, तो एक आवाज आई ला तकतुल, इसको कत्ल ना करो। वो परेशान हो गया कौन है, फिर भी बाज ना आया। जब तीसरी दफा तलवार उठाई तो इससे पहले कि वो कुछ करता कोई आया और उसने उसका सर कलम कर दिया। तो जैद बिन हारसा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं। जब तुमने पहली दफा कहा या अरहमुर्राहिमीन तो मैं अर्श के पास था, अल्लाह ताला से मैंने इजन लिया और मैंने कहा था ला तख्तुल। जब तुमने दूसरी दफा कहा या अरहमुर्राहिमीन तो मैं सातवें आसमान पे पहुंच चुका था, उसी ने कहा था ला तख्तुल। और जब तुमने तीसरी दफा कहा तो अल्लाह के इजन से मैं तुम्हारे पास पहुंच चुका था। अरहमुर राहिमीन इतना बड़ा कलमा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अरहमुर राहिमीन रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, जितने कोई आपके जहन में आते ना, फलां बड़ा रहम करने वाला, फलां बड़ा इस तरह को लोगों का ख्याल करता है, फलां बड़ी मोहब्बत करता है किसी से, जितनी मोहब्बतें आपको पता है, जितनी केयर आपको पता है, जितनी माएं, जितनी सोशल वर्कर, जितने कितने भी आप, जितनों सब कोई जमा कर लें, किसी एक की एग्जाम्पल ना दें, सबको जमा कर लें, तो इनकी जो केयर है, मोहब्बत है, शफकत है, मेहरबानी है, लोगों के दुख सुख में काम आना है, तड़प जाना है किसी के लिए, ये सारी तड़प, ये सारी एहसास, ये सारी केयर, ये सारी मोहब्बत, ये सब तो उसकी रहमान की रहमत के एक हिस्से में से कुछ पोर्शन है। मैंने आपको लास्ट टाइम वो हदीस बता दी थी, उस एक हिस्से का एक पोर्शन है, सोचें वो रहमान कैसा होगा फिर जिसके पास 99 हिस्से हैं रहमत के। वो जात कसीर और रहमान है और अर्रहीम जा आ जाता है, तो इसमें भी रहम करने का माना है, कोई अलग अलग बात नहीं है, मगर इसमें क्या है जो बार बार रहम करता है, बार बार रहम करता है। देखिए ना, एक बंदे में कोई सिफत हो सकती है, मसलन है कोई बहुत गनी है, बहुत गनी, बहुत देता है, बहुत देता है, बहुत देता है, लेकिन कोई एक दिन आता है कि वो कहता है कि आज नहीं मैंने देना, ठीक है मैं हूं लेकिन आज मैंने नहीं देना। लेकिन अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है, यानी बहुत ज्यादा रहम करने वाला भी है और बार बार रहम करने वाला भी है। ऐसे नहीं कि बस बहुत ज्यादा रहम करने वाला आज तो है लेकिन कल नहीं रहम कर रहा, पिछले गुजरे हुए कल में तो बहुत रहम कर रहा था लेकिन बस आज नहीं कर रहा। जब रहीम आ गया तो कंप्लीट माना हो गया, बहुत ज्यादा और बार बार। इसीलिए जब कहा जाता है ना, वो रहमान दुनिया में और रहीम आखरत में, रहमान दुनिया में यानी काफरों को भी, मोमिनों को भी, सबको दे रहा है बहुत ज्यादा, और रहीम वो आखरत का जो दिन आएगा उसमें रहम करेगा फिर मोमिनों पर। तो रहमान और अर्रहीम दो हमने अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत सिफात पढ़ ली, और इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी को अल्लाह का तारुफ दें तो तो इस तरह से अल्लाह को इंट्रोड्यूस कराया करें, अपनी मर्जियों से ना कराया करें। हाँ तुम जहन्नमी हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम्हें तो आग में जलोगे, तो पता ये अल्लाह का तारुफ नहीं है। ये बातें की गई कुरान में, लेकिन वो जहन्नम की बातें बाद में आई हैं। आप देखें यहाँ पे क्या कोई बात है ऐसी, नहीं है। तो जो आप स्टार्ट करें, तो स्टार्ट कैसे आपने करना है वो यहाँ पे बता दिया गया। आगे चलें, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है वो यौमुद्दीन का। अच्छा, पहली बात जो इसका तर्जुमा है, मालिक यौम दिन का, अद्दीन दीन, दीन तो हम समझते हैं मजहब को कहते हैं, मेरा दीन इस्लाम है, तो यहाँ पे बदले के लिए आया। जी हाँ, वो भी माना है, वो भी सही माना है। दीन वे ऑफ लाइफ को कहते हैं, शरीयत को कहते हैं, निजाम हयात को कहते हैं, लेकिन दीन जजा व सजा को भी कहते हैं, बदले को भी कहते हैं, जिसको कहते हैं एग्जैक्ट इसके लिए, जो अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश में की जाए, डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट का भी दिन है, तो दीन वहां पे जजमेंट के लिए भी आता है। वो मालिक है यौमुद्दीन का। अच्छा, अब जब इंसान रहमान और रहीम पढ़ता है ना, तो फिर वो क्या सोचता है, बस फिर तो आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो मर्जी करो, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है भाई, आप फिक्र की जरूरत नहीं, अब अपनी मर्जियां करो, जैसे चलना है चलो, बस उसे वो तो रहम करना है, उसने इतना उसका रहम है, उसने मेरे पर भी रहम कर देना। जैसे लोग कितने बेपरवाह होके आराम से बोलते हैं नाफरमानियां करके, हाँ अल्लाह गफूर रहीम है ना, तो क्या हुआ, तो फिर इतने बेढब भी ना चलो, ये भी याद रखना वो मालिक है यौमुद्दीन का। इसके अंदर क्या आ गया, अकीदा है आखरत। सबसे पहले किसी को कयामत के दिन पे यकीन होगा, तो फिर किसी को मालिक मांगे मानेगा ना। तो देखें तौहीद भी इसके अंदर आ गई, आखरत पर ईमान भी आ गया, और इन्हीं आयात में रिसालत पर ईमान भी आता है। वो कैसे आता है वो बाद में आपको बताऊंगी, पहले आप ये सुने, आखरत पर ईमान, आपका आखरत पर ईमान है तो तब आप कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन। और जो लोग कहें कोई आखरत नहीं है, कोई जन्नत जहन्नुम नहीं है, कोई सजा जजा नहीं है, बस जो भी है वो ये दुनिया ही है, तो वो तो यहीं पे उनका तो पत्ता साफ हो गया, आगे क्या चलेंगे, उन मालिक यौमे तीन पे ही बैठ गए। अब यहाँ पे इसलिए ये लाया गया कि ये बता दिया गया कि जब तुम ये समझ लो कि वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमान और रहीम है, तो कहीं ये ना हो कि इस वजह से तुम बिल्कुल अपने आप को क्षत्रिय बेमुहार की तरह आजाद छोड़ दो और अपनी मर्जियां करो। नहीं, एक वो भी दिन है जिस दिन उसने हिसाब लेना है, जिस दिन उसने तुमसे पूछना है, और उस दिन का मालिक वही है। अब ये क्यों कहा गया मालिक अल्लाह ही है उस दिन का, अब भाई आज भी तो मालिक अल्लाह ही है, तो मालिक यौमिद्दीन ही क्यों कहा गया, इसलिए कि दुनिया में तो कहीं ना कहीं हम इस धोखे का शिकार हो जाते हैं कि मैं भी मालिक हूं। जो हमें थोड़ा बहुत इख्तियार मिला हुआ है ना, कि मैं नमाज के लिए उठूं या नहीं उठूं, मैं कुरान खोलूं या नहीं खोलूं, मैं क्लास में सो जाऊं या जागी जाऊं, ये मैं इसको समझती हूँ कि मैं मालिक हूं। पता नहीं अपने आप को हम कितने बड़े मालिक समझ लेते हैं, अपने आप को बा इख्तियार समझ लेते हैं। इसी तरह फिर हम सोचते हैं इस घर की मालिक मैं हूं, इस गाड़ी की मालिक मैं हूं, इन 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 चीजों की मालिक मैं हूं। तो ये तो एक नंबर वन, जो इख्तियार मिला है ना आपको, वो तो टेम्पररी अल्लाह के इजन से ही मिला है, टेम्पररी है और अल्लाह के इजन से है। जो आप समझते हैं आप चीजों के मालिक है, तो वो हम मालिक नहीं है। अगर हम मालिक होते तो हम कभी दुनिया से खाली हाथ ना जाते, चीजों को साथ लेके जाते, क्योंकि जाहिर है हमारी मिल्कियत है, क्यों छोड़ जाते फिर। दूसरे, अगर आप मालिक होते तो आपने किसी से क्यों खरीदी है, तो आपने जब पैदा हुए थे तभी से मालिक होना चाहिए था। आप किसी से खरीदते हैं, किसी से लेते हैं, पहले किसी की होती फिर आप ले लेते हैं, फिर आपसे कोई और ले लेता है, ये तो मालिक ना होना हुआ। और अगर इतने ही मालिक होते तो कयामत के दिन नंगे बदन नंगे पैर क्यों खड़े होते, खाली हाथ क्यों खड़े होते, पैसों की बोरियां साथ लेके आते। चलो पैसों को तो छोड़ो, कम से कम कपड़े तो पहन के आते। ये अल्लाह दिखा देता है कि तुम किसी चीज के भी मालिक नहीं हो। ठीक है, दुनिया में भी मिल्कियत अल्लाह ही की है, लेकिन दुनिया में हमें नजर नहीं आती, उस तरह हमें लगता है हम मालिक हैं। धोखा है बस चीज समझ ले, उस तरह से हम देख नहीं पाते, लेकिन कयामत के दिन सबके सामने जाहिर हो जाएगा कि मालिक अल्लाह ही है, सबका धोखा खुल जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई बात कि सब इख्तियार मालिक का मतलब क्या है। मालिक यानी जिसकी मिल्कियत है, जिसका इख्तियार है, सबके इख्तियार खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे जो हमें आज इख्तियार मिले हुए अल्लाह के इज़न से मिले हुए, अल्लाह ने खुद दिए हुए, वो भी अल्लाह खत्म कर देगा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मुतकब्बिर, बड़े बड़े हुक्मरान जो हैं खामोश खड़े होंगे, जो आज आप सदर, बादशाह, वजीर आजम, जिनके आगे रेल पेल देखते हैं सिपाहियों की और पहरेदारों की, सब गायब होंगे। बल्कि दुनिया के बादशाह अपने आप को समझते हैं हम बादशाह हैं। ये क्या बादशाह हैं जिनको अपने वुजरा की जरूरत होती है, ये हर बार डर रहता है कोई बगावत ना कर दे। असल बादशाह तो अल्लाह है। आपको पता है इस मालिक यौमिद्दीन, कई जगह पढ़ाता है, कभी आपने नोट किया होगा, मलिक यौमिद्दीन भी आता है। कभी आप किसी के पीछे नमाज पढ़े, वो कहते हैं मलिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन नहीं कहते, तो आप कहते हैं हाँ इसने तो गलत पढ़ दिया। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी किरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मलिक यौमिद्दीन भी साबित है, मालिक यौमिद्दीन भी साबित है। तो कभी आप अगर आप मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ लेंगे तो वो भी ठीक है। मलिक का मतलब क्या होता है? मलिक साहब, हम दुनिया में भी लोगों के नाम होते हैं मलिक, तो क्या मतलब होता है? बादशाह, किंग, बादशाह साहब इख्तियार होता है। और मालिक, मालिक का तो आपको माना पता है, ओनर जो होता है, जिसकी मिल्कियत होती है, जिसका हुक्म चलता है, कानून चलता है। तो अल्लाह उस दिन का मालिक है या बादशाह है, दोनों ही माने ठीक है। और क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला उस दिन जो भी फैसला करे, जैसा कुछ भी करे, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, सब बेख्तियार होंगे। मालिक, मलिक होता है ना बादशाह, यानी मलिक यौमिद्दीन बादशाह होगा वो उस दिन का। कोई और बादशाह जो होता है वो साहिब इख्तियार होता है, कोई और साहिब इख्तियार नहीं होगा उस दिन। सबके इख्तियार खत्म हो जाएंगे। इवन यहां तक के आपने वो हदीस सुनी होगी, जिन्होंने सुनी है, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, वो जो आखिरी बंदा जहन्नुम से निकलेगा जन्नत में जाने के लिए, उसको जन्नत में दाखिल किया जाए, लास्ट वन जो जन्नत में दाखिल होगा, वो आपको याद होगा, क्योंकि वो लंबी हदीस, हम उसमें इस वक्त नहीं जा सकते। आपको याद होगा उस हदीस के अंदर ये है कि उसका रुख जहन्नुम की तरफ होगा, जन्नत उसकी पीछे होगी। तो वो दुआ करेगा, अल्लाह मेरा रुख जहन्नुम से फेर दे। इससे क्या पता चला? इतना भी इख्तियार नहीं। देखिए, हमें दुनिया में इख्तियार है ना, मैं आप कंप्यूटर की तरफ देखूं या मेज की तरफ देखूं या बाहर देखना शुरू कर दूं, हमारा इख्तियार यहाँ पे अल्लाह ने दिया हुआ ना, इतना भी नहीं उसको इख्तियार होगा कि वो अपना रुख फेर ले जहन्नुम से और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए। इतना भी उसको इख्तियार नहीं होगा, कहेगा मुझे अल्लाह जन्नत के करीब कर दे। उसको ये नहीं इख्तियार होगा चल के चला जाए, जाके खुद ही खड़ा हो जाए, इसमें क्या मुश्किल बात है। फिर उसके बाद उसमें हदीस में आता है कि आगे वो कितनी देर दुआ मांगता रहेगा, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। हाँ, तो क्या वो खुद ही नहीं जा सकता? तो इससे पता चलता है कोई इख्तियार नहीं, नो अथॉरिटी, नो पावर। उस दिन सब पावरलेस हो जाएंगे, सिर्फ पावर उस दिन अल्लाह के पास है, ओनली सोलली अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने 30वें पारे में फरमाया ना कि ममा अदरा कमा यौमुद्दीन, तुम ममा अदरा कमा यौमुद्दीन, तुम्हें क्या पता वो यौमुद्दीन क्या है। यौम अल्लाह तमलिकु नफ्सुन लि नफ्सिन शैया वल मुल्कु यौम इदिन लिल्लाह। जिस दिन कोई नफ्स किसी चीज का मालिक नहीं होगा, कोई इख्तियार नहीं होगा किसी को, बादशाहत अल्लाह के लिए होगी उस दिन। तो इससे हमें पता चलता है कि वो दिन जो जजा और सजा का है, उस दिन इख्तियार अल्लाह का, फैसला अल्लाह का, जजमेंट उसकी, और बाकी सब बे इख्तियार। एक हदीस में आता है अल्लाह ताला उस दिन ये फरमाएगा, अनल मलिकु अन दयान, मैं बादशाह हूं और मैं अदयान हूं। दयान इसी से है, ये दीन से। दयान का मतलब क्या? यानी बदला देने वाला, मैं हूं अदयान। कोई और नहीं अथॉरिटी रखता होगा बदला देने की किसी को, ना सजा की ना जजा की, और ना ही कोई इख्तियार रखता होगा किसी भी किस्म का। ये जो इंसान सोचता है मेरा ये मेरा वो, मैं बड़ा बाइख्तियार, मेरे इतने ताल्लुकात, ये सब धोखे खुल जाने, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन सिर्फ अल्लाह की जात है। तो अब हमने क्या करना है इस आयत को पढ़ के? इसका मतलब हमने समझ लिया ना कि एक बदले का दिन है, उसका मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो क्या करना है? उसकी तैयारी करनी है। एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि वो जजा और सजा का दिन कब कायम होगा, यानी कयामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने उससे सवाल किया, फरमाया तुमने इसकी तैयारी क्या की है? हम पीछे पड़े रहते हैं किस चीज के, उसकी निशानी पूरी हुई कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, अच्छा ऐसे हुआ कि नहीं, अभी तो ईसा अलैहि सलाम है। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अगर हम भी नबी अलैहि सल्लतु वसलाम के जमाने में होते और ये पूछते कि कयामत कब आनी है, तो वो हमें भी यही कहते कि तुमने क्या तैयारी की है। तो बात क्या है असल तैयारी करने की, इसके पीछे ना पड़े वो कब आएगी, ये देखे मैं उसके लिए तैयार हूं या नहीं, मुझे खड़े होना अल्लाह के सामने। तो इस आयत को पढ़ने का फायदा यही है कि फिर हम उस दिन को अपने जहन के अंदर लेकर आए कि जब मैं अल्लाह के, जब आप नमाज में खड़ी हुई मालिक यौमिद्दीन पढ़ रही हैं, तो सोचें कि मैं ऐसे ही अल्लाह के सामने खड़ी होंगी और उस दिन का मालिक वो होगा, उस दिन का बादशाह वो होगा, फिर मेरी क्या तैयारी है? जो ये कहता है मैं मानती हूं, मैं मानती हूं कि हाँ वो कयामत का दिन है, लेकिन उसकी कोई तैयारी नजर नहीं आती, उसकी कोई सोच ही नहीं है, तो इसका मतलब है यकीन नहीं है इस दिन का। अगर यकीन होता तो तैयारी ना करते, भला छोटी सी बात का यकीन हो, अगर हमें अभी यकीन हो कि बाहर कोई, अल्लाह माफ करे, कोई तूफान आना है, तो हम फौरन अपनी चीजें संभालेंगे जो बाहर पड़ी हुई है, चीजें उड़ ना जाएं, कपड़े उतार के ले आते हैं, ये यकीन होता है, जबकि हाँ भाई ऐसा कोई मौसम के हालात हो रहे हैं। इतने बड़े दिन का जिसको यकीन हो, हैरत है कि अगर वो ये कहे कि मुझे तैयारी की जरूरत ही नहीं और आराम से बैठा रहे, इसका मतलब उसको यकीन नहीं है। और वो यौम है, हम तो यौम समझते हैं किसको, ये 24 आवर को, दिन का हमने क्या समझा, जब से या सूरज निकला उससे लेकर रात तक ये एक दिन है, वो ये दिन नहीं है, वो यौम कैसा है? वो 24 आवर्स का नहीं है, या 12 घंटे का सूरज निकलने से रात तक का नहीं है, वो कितना लंबा होगा ये उस पर डिपेंड करता है जितना एक इंसान का ईमान होगा। जिसका ईमान खालिस है और बहुत मजबूत है, जबरदस्त ईमान के साथ गया है, उसके लिए सिर्फ इतना लंबा होगा जितना एक फर्ज नमाज पढ़ने का वक्त, या हदीस में आता है असर से मगरिब तक का वक्त। और जिसकी तैयारी नहीं है, उसके लिए जितनी तैयारी कम होगी उतना ही लंबा होगा, जितना ईमान कम होगा उतना ही लंबा होगा। जिसकी बिल्कुल ही कोई तैयारी नहीं थी, जिसने बिल्कुल इस दिन का सोचा नहीं था, उसके लिए तो 50,000 साल के बराबर होगा। आप देखें ना, एक ही रात होती है, कोई उठ के कहता है हाय पता भी नहीं चला कब सोई और कब रात भी गुजर गई, हालांकि 12 घंटे सोए होते, और दूसरा क्या कहता है ये रात नहीं थी, ये तो पहाड़ के बराबर थी मेरे लिए, मैं जो तकलीफ में होता उसके लिए तो ऐसी ही होती, वो सारी रात कराहता रहता उसके लिए तो ऐसे लगता है कि सदियां गुजर गई, वो टाइम ही देखता रहता है, रात गुजरती ही नहीं, और एक जो सोया हुआ उसके लिए कैसे मजे से गुजर गए। तो वो दिन भी ऐसा है, जाहिर है जिसने अब आंख खोली, जब उसने ये दिन देखा तब उसको होश आया, वो इससे पहले बेहोश ही पड़ा हुआ था, दुनिया गुजार के आ गया, होश उसको अब आया, उसके लिए तो ये दिन बहुत लंबा है। और जो दुनिया में होश में रहा और अपने लिए तैयारी की, उसके लिए इंशाल्लाह वो दिन ऐसे ही है या असर से मगरिब तक का बाद। अल्लाह ताला इस दिन को याद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। इसमें रिसालत कैसे आती है, मैंने आपको बताया तौहीद भी इसमें आ गई, आखरत भी आ गई। आखिरी बात आपको बताते हैं, रिसालत कैसे आई। जब आया अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और उसकी रहमत, जो उसकी रहमत इतनी है बंदे पे, वो ये नहीं सिर्फ उसकी रहमत के बंदे को खिलाता पिलाता बस ये रहमत हो गई, उसकी रहमत ये है, ये भी है उसकी रहमत कि वो अपनी मखलूक को, अपने बंदों को अंधेरों में भटकने के लिए नहीं छोड़ देता, वो खिलाता पिलाता तो है लेकिन बंदे की हिदायत का भी इंतजाम करता है। ये उसकी रहमत का बहुत बड़ा इजहार है कि उसने हिदायत पहुंचाने के लिए रसूल भेजे ताकि इंसानियत भटके नहीं, जहन्नुम में ना चली जाए। ऐसे ही है जैसे कई माँ बाप सिर्फ बच्चों के लिए क्या फिकर करते हैं कि इनको ब्रांड नेम ये पहन लें, इनको बड़े से बड़े अच्छे स्कूल में दाखिल कर लें, इनको अच्छी से अच्छी गिज़ा खिला दें, बस ये उनका शौक होता है, सैरों पे चले जाएं। लेकिन जो समझदार वालदैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की आखरत की फिक्र पहले करते हैं, हमारे बच्चे सही, अपनी आखरत इनकी संवर जाए, ये वहां जाके इनको कोई अजाब ना हो। तो अल्लाह ताला भी, तो इसका मतलब रहमत से आप समझते हैं ना, असल रहमत क्या है। अल्लाह ताला ठीक है दुनिया में रिस्क भी देता है, सस्टेन भी करता है, लेकिन एक रहमत जो उसकी बहुत बड़ी है, जो सबसे बड़ी रहमत है, जैसे मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि अर-रहमान अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया, तो उसकी रहमत के एक बहुत बड़ा जहूर मैनिफेस्टेशन ये है कि उसने हिदायत का इंतजाम किया इंसान के लिए। और हिदायत किसी के जरिए आई ना, तो रसूल के जरिए आई, तो रसूलों का भेजना अल्लाह की रहमत है बहुत बड़ी। तो आपने इन तीन आयात में क्या पढ़ लिया, तौहीद, रिसालत, ईमान बिल आखिरा। सुभान अल्लाह, कोई और कलाम वाकई इसका मैच नहीं कर सकता। जैसे अल्लाह ताला ने तीन आयात में तीन बेसिक जो हमारे अकायद हैं उनको इन तीन आयात में कवर कर लिया। जो ये तीन आयात पर ईमान लाता है उसका ईमान इन तीनों पे है, और जो इन तीन आयात को ही ना समझ पाया उन्हें बहुत बड़ा खजाना खो दिया। अल्लाह ताला हमसे ये बैठना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इन आयात की सही समझ हमें अता फरमाए, और हमारे लिए इन आयात को तोशा आखरत बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इन्हीं आयात की हमें डिफरेंट कारीज की आवाज में तिलावत सुनाए इंशाअल्लाह ताला।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين